اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انی تارکن فیکم مستقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ یعنی قرآن مجید اور دوسرا میرے اہل بیت علیہم السلام۔ محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، پوڈ کاسٹ کا سلسلہ ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ ابھی جو حدیث آپ سب کے سامنے رکھی گئی ہے، تلاوت کری گئی ہے، پیش کری گئی ہے، اس سے آپ سب کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ کا موضوع قرآن اور آج کا معاشرہ رہنے والا ہے۔ اس موضوع پہ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جن کی قرآن کے موضوع پہ کافی بہترین مہارت ہے۔ جب بھی قرآن سے قربت کی بات آتی ہے تو آغا صاحب کا نام کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں رہتا۔ حالیہ دنوں میں المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی سے تعلیمات قرآن اور قرآن کی ثقافتی تبلیغ و ترویج میں آغا صاحب کو اعزازی شیلڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ حجت الاسلام والمسلمین حافظ مولانا سید حیدر نقوی صاحب قبلہ، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
امید ہے قبلہ آپ خیریت سے ہوں گے۔
الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔
اچھا آغا صاحب، سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہی کرنا چاہوں گا کہ نوجوانوں کو آج کل جو مسائل درپیش ہوتے ہیں ان کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے اہم وجہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے دوری سمجھا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے، اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں بالخصوص کچھ اہم نکات کو ڈسکس کر سکیں آپ کے سوالات کی روشنی میں۔ آپ نے جو سوال کیا ہے، قرآن، قرآن کریم اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے دوری، تو میں ایک مثال کے ذریعے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ سب سے پہلے ہم قریب ہونے اور دور ہونے کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ بعض اوقات ظاہر میں دو چیزیں بڑی قریب نظر آ رہی ہوتی ہیں ہمیں، لیکن حقیقت میں بہت دور ہوتی ہیں ایک دوسرے سے۔ مثال کے طور پر فرض کریں ایک انسان ہے، وہ اس کو کسی نے کہہ دیا کہ قرآن مجید بڑی بابرکت کتاب ہے، اس کو ہر وقت ساتھ رکھو، تو وہ اپنی جیب میں، اپنی گاڑی میں، جہاں بھی جاتا ہے قرآن ساتھ رکھتا ہے، اور اتنا ساتھ رکھتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ بندہ تو قرآن سے جڑا ہوا ہے۔ لیکن کسی دن ایک بندہ اس سے سوال کرتا ہے کہ بھائی اس قرآن ظاہر ہے کہ ایک کتاب ہے، تو آپ ماشاءاللہ ہر وقت قرآن آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کی جیب میں ہوتا ہے، آپ کی گاڑی میں ہوتا ہے، تو اس قرآن کے اندر جو باتیں ہیں وہ آپ ہم سے بھی شیئر کریں، تو آپ کو معلوم ہے کہ ایسے قرآن سے قریب رہنے والے کا جواب کیا ہوگا، اسے خود بھی کچھ نہیں پتہ۔ لہذا یہ ظاہری قریب ہونا حقیقت میں قریب ہونا نہیں ہے۔ قرآن سے، قرآن کا معاملہ ہو یا محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا معاملہ ہو، ان سے قریب ہونے کا معنی یہ ہے کہ جس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا تھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور ان کے بعد ان کے دین کے وارثوں نے یعنی اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کچھ بتایا ہے اور جو رہنمائی فرمائی ہے، اس پر جو جتنا عمل کر رہا ہے اتنا ان سے قریب ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ مدینہ میں رہتا ہو، مسجد نبوی میں ہر وقت کھڑا رہتا ہو روضہ رسول کے پاس، ہو سکتا ہے کوئی کربلا میں رہتا ہو ہر وقت امام حسین علیہ السلام کے روضے کے پاس کھڑا رہتا ہو، لیکن جب تک ان کی بتائی ہوئی باتوں پر اس کا عمل نہیں ہے، پہلے علم، صحیح علم، حقیقت کا علم، कि वो क्या चाहते थे, उनकी पूरी जिंदगियां क्या गवाही दे रही हैं, वो क्या चाहते थे। तो अगर वो अमल नहीं करता और नहीं जानता तो वो करीब नहीं है, अगरचे फ़ोटो में या वीडियो में आपको हर वक्त वहाँ पे खड़ा नज़र आए, करीब खड़ा नज़र आए, करीब नहीं है। तो कुरान करीम और अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम का भी यही मामला है। हम समझते हैं कि कुरान मजीद, चूँकि अभी बेसिकली हमारा मौजू कुरान मजीद है, तो कुरान मजीद के हवाले से बहुत सारे काम हमारे मुआशरे में देखे जाते हैं, और वो सारे के सारे काम मुमकिन है कि वो सही हों, मेरी मुराद उनको गलत कहना नहीं है, लेकिन उनमें से कोई काम भी अल्लाह ने अपने कुरान में खुद जिक्र नहीं किया कि मैंने कुरान इसलिए भेजा है। अल्लाह ने पूरे कुरान में एक ही बात की है बार बार, कि ये कुरान मैंने इसलिए भेजा है ताकि लोग इसकी आयात में गौर करें, और जो नसीहत मैंने की है, जो हिदायत मैंने की है, वो नसीहत हासिल करें ताकि उस पे अमल कर सके। कुरान करीम के बारे में कुरान की अपनी आयात हो या अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के फरामीन हो, पूरी की पूरी ताकीद इस किताब को समझने पर है, और ताकि समझने के बाद इस पर अमल किया जा सके। तो इस एतबार से अगर आप देखें तो हमारे मुआशरे में या पूरे जहान इस्लाम में आप देख लें, और इसमें मैं कहूँगा कि हम लोग भी जो शिया हैं और हमारे अहले सुन्नत भाई भी, अक्सरियत अवामुन नास की, बल्कि मैं कहूँगा कि एक बड़ी तादाद इनके उलमा की भी, उनको भी कुरान मजीद के बारे में सही तरह पता नहीं है। आपको कितने हाफिज मिलेंगे, हिफ्ज़ करना बहुत अच्छी बात है, बड़ी फजीलत है, लेकिन आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, इशारा कर रहा हूं, कुरान मजीद में एक आयत है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 121, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है जिन्हें हमने किताब अता की है और वो इस किताब को ऐसे पढ़ते हैं जैसे पढ़ने का हक है, यही लोग इस पर ईमान रखते हैं। तो इस आयत की तफसीर में एक रिवायत है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से, जिसमें वो हक के तिलावत कैसे होता है उसकी वजाहत फरमाते हैं, और उसमें इमाम फरमाते हैं कि हक के तिलावत ये है कि कुरान को बड़े आराम से पढ़ा जाए ताकि अच्छी तरह समझा जाए, ताकि उस पर अमल किया जाए। फिर उसके बाद इमाम फरमाते हैं, रिवायत के अल्फाज में कसम है, वल्लाह, अल्लाह की कसम, इसके अल्फाज को हिफ्ज कर लेना ये हक की तिलावत नहीं है। यानी अगर फहम ना हो तो ये जो अल्लाह फरमा रहा है, जो इसकी ऐसे तिलावत करते हैं जैसे तिलावत करने का हक है अल्लाह की निगाह में, और फिर अल्लाह फरमा रहा है कि यही इस पर ईमान रखते हैं, ये बड़ी खतरनाक बात है। तो इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम इसकी आयात का हिफ्ज़ कर लेना हक़ के तिलावत नहीं है, अल्लाह की कसम इसके हरूफ को अच्छी तरह अदा कर लेना हक़ के तिलावत नहीं है, हर रोज़ एक सूरत की तिलावत कर लेना हक़ के तिलावत नहीं है। फिर वजाहत फरमाते हैं कि इन लोगों ने कुरान के हरूफ तो हिफ्ज़ कर लिए लेकिन कुरान के अहकाम को ज़ाया कर दी। तो कितनी बार इत्तफाक होता है, मसलन हाफिज़ साहब हैं, उनसे पूछा जाए बड़ा अच्छा कुरान सुनाएंगे, लेकिन ये पूछा जाए जो आपने सुनाया है
इसका मतलब
इसमें बात क्या की गई है, मुझे नहीं मालूम कि इतनी ताकीद के बावजूद कुरान में तदब्बुर आयात अहादीस की इतनी ताकीद के बावजूद वो लोग के जो कुरान से अटैच हैं उनको भी कुरान मजीद के मानी नहीं सिखाए जाते सिवाय एक कलील तादाद के। तो शायद शायद नहीं बल्कि हतमन अल्लाह की ज़ात को, कि जो माजी भी जानता है, हाल भी जानता है, आइंदा भी जानता है, तो सूरतुल फुरकान की आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि रोज़े क़यामत अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम اپنی قوم کی، اپنی امت کی یہ شکایت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اگر آپ اس میں غور فرمائیں، قرآن کی آیت جب ثبت ہو گئی، چاہے مستقبل کے بارے میں، وہ بدل نہیں سکتی، اس کا مطلب ہے یہ شکایت ہونی ہے قیامت کے دن. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شکایت نہ ہو، ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں، اور بچے گا وہی جو کہہ سکے کہ میں قرآن سے دور نہیں ہوں، اور وہ کہنا فقط زبانی نہ ہو بلکہ اس کا اعمال نامہ، اس کا قرآن کے ساتھ، قرآن کو دیا گیا وقت، قرآن میں غور و فکر، وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہو. اللہ تعالیٰ عمل کے بغیر کچھ قبول نہیں کرتا. تو آگے بڑھتے ہیں، انشاءاللہ مزید بات کریں گے.
اچھا صاحب، اسی سے میں آگے لیتا ہوا چلوں کہ ابھی جو آپ نے ذکر کیا امام صادق کی حدیث بھی ذکر کی، اسی کو میں تھوڑا سا کنٹینیو کرنا چاہوں گا. جیسے عربی زبان ہے، ہمارے پاکستان میں بہت ہی کم تعداد ہوگی جو عربی زبان جانتے ہیں، اور جو زبان پھر عربی زبان میں ہی تلاوت فرما رہے ہوتے ہیں فقط، اس چیز کا کیا فائدہ ہے؟ دوسرا پھر اس کا بھی ظاہراً کچھ نہ کچھ ثواب تو ہے. اس کے علاوہ یہ بھی واضح کریں کہ اگر اردو میں قرآن کو ہم ترجمہ پڑھیں فقط، تو اس کا زیادہ ثواب ہے، یا پھر عربی زبان بھی میں بھی تلاوت کرنا ضروری ہے؟
بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اس کا جواب آپ کی خدمت میں اگر میں عرض کروں تو ڈائریکٹ جواب سے پہلے ایک اور بات کروں گا کہ انسان جب آپ، میں یوں کہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ ایمان اصل میں کسے کہتے ہیں؟ ایمان پیدائشی نہیں ہوتا، زبانی نہیں ہوتا، ایمان دل کی ایک کیفیت کا نام ہے کہ آپ دل میں کسی چیز پر باور کر لیتے ہو اور اسے تسلیم کر لیتے ہو، اور پھر اس کے بعد آپ کا جو عمل ہے وہ آپ کے دل میں موجود بات کی گواہی دیتا ہے.
صحیح.
مثلا ایک اگر طالب علم ہے، اس کو یہ امید ہو، میں یہ بھی یقین بھی نہیں کہہ رہا، اس کو امید ہو کہ اگر میں کوشش کروں تو میں اس امتحان میں ٹاپ کر سکتا ہوں.
صحیح.
یہ اس کے دل میں ہو. کچھ تو ہوتے ہیں نا ایسے نالائق ہوتے ہیں، ان کو یہ امید بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، تو وہ اور چکروں میں پڑے ہوتے. لیکن جس کو یہ امید ہو، اس امید سے یہ دل میں اگر اس کے بات ہے، اس پر اگر اسے ایمان ہے، تو اس کا لازمہ کیا ہے؟ وہ محنت کرتا نظر آئے گا آپ کو.
بالکل.
اور یہ نہیں کہ امتحان دینا ہے فزکس کا تو محنت وہ آرٹس پہ کر رہا ہو، محنت بھی فزکس پہ کر رہا ہو کیونکہ اس میں نمبر لینے. تو انسان کے دل میں جب ایمان ہوتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب ہمیں ایمان ہوتا ہے کہ آج کل کی دنیا میں انگریزی سیکھے بغیر چارہ نہیں ہے. انگریزی ہوگی تو شخصیت ہوگی، انگریزی بولیں گے تو لوگ امپریس ہوں گے فلان، اور یہ ایک حقیقت ہے. اور انگریزی سیکھنی چاہیے، یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کوئی، ہر زبان اپنی جگہ پر اس کی امپورٹنس ہوتی ہے، اور انگلش چونکہ انٹرنیشنل زبان ہے حتماً آنی چاہیے، سیکھنی چاہیے. لیکن میں بات اور کر رہا ہوں کہ انگلش بڑی محنت کر کے لوگ سیکھتے ہیں کیونکہ ان کو ایمان ہوتا ہے کہ اس کے فائدے ملیں گے. تو اگر اتنا سا ایمان ادھر بھی ہو جائے تو عربی بھی کوئی ایلینز کی زبان نہیں ہے کہ جو سمجھ نہ آئے. اس دنیا میں بہت سے لوگ جو عرب نہیں تھے انہوں نے عربی سیکھی ہوئی ہے. لیکن ایک سٹیپ نیچے آ جائے، علماء نے، عربی جاننے والوں نے جب گویا کہ امت کے ایمان کی حالت دیکھی تو انہوں نے کہا کہ ان کے لیے آسان کرو، ترجمہ کر دو، ٹرانسلیٹ کر دو. کچھ لوگ جو مسلمان ہیں خود کو مومن بھی کہتے ہیں لیکن ان کا ایمان اتنا پاورفل نہیں ہے کہ ان کو عربی سکھا سکے. دنیا پر ایمان پاورفل ہے، انگلش سکھا سکتا ہے، پش کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. ماں باپ کو بھی فکر ہوتی ہے، نہ پڑھ رہا ہو تو مار پیٹ بھی کر دیتے ہیں بعض اوقات کہ نہیں پڑھے گا تو کل کو بھوکا مرے گا. اتنا ایک اگر اس کے بارے میں بھی ہوتا کہ نہیں پڑھے گا تو آگ میں جلے گا، نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. मैंने कहा ईमान एक कैफियत का नाम है, ज़ुबानी कलामी ईमान। अल्लाह के यहाँ उसकी कोई वैलिडिटी, कोई उसका वज़न नहीं है। तो बहरहाल जब बाज़ लोगों ने देखा कि मुसलमान भी और ख़ास तौर पे फिर नॉन मुस्लिम्स के जो अरब नहीं हैं उन तक ये पैगाम कैसे पहुंचाया जाए, तो उन्होंने मुख्तलिफ ज़ुबानों में तराजम कर दी। उर्दू ज़ुबान में कितने तर्जमे मौजूद हैं, मकतब अहले बैत के उलमा ने और अहले सुन्नत बिरादरान उनके उलमा ने बहुत सारे तर्जमे किए हैं। और अब तो बड़ा आसान हो गया, आपके पास ऐसी ऐप्स आ गई हैं कि आप एक ही आयत के नीचे कितने ही तर्जमे देख सकते हैं, शिया सुन्नी दोनों तर्जमे देख सकते हैं। तो अगर उतना पावरफुल ईमान नहीं है, कम वाला है, तो तर्जमा पढ़े। खुद तर्जमा पढ़ने से भी बहुत ज़्यादा इस्तफादा होता है। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ खुद अपने बारे में, मैं ए लेवल्स कर रहा था, 1994 की बात है, तो कोई मेरा ताल्लुक नहीं था। पैदाइशी तो मैं मुसलमान भी था, सादात के घराने से मेरा ताल्लुक था, लेकिन दीन से कोई ताल्लुक नहीं था। एक इत्तफाक हुआ जिसके बाद मैंने इरादा किया कि कुछ दीन के बारे में मालूमात ली जाएं,
जी
तो मैंने बाज़ार गया और कुरान का तर्जमा ख़रीदा मैंने, और मैंने पढ़ना शुरू किया। और जब मैं वो कुरान का तर्जमा पढ़ना मैंने शुरू किया था, तो उस वक्त मैं मेरे ए लेवल्स में कुछ अर्सा रह गया था एग्ज़ाम्स में, और मेरा इरादा अमेरिका जाने का था। मैंने दाखिले के लिए अप्लाई कर दिया था, वहाँ से पेपर्स वगैरह भी मसलन आ गए थे, टोफल एग्ज़ाम होता है वो दे दिया था। तो जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, मैं हर रोज़ पढ़ने के लिए जब बैठता था तो मैंने कहा कि ना 15 मिनट 15 मिनट्स जो है वो इसको पढ़ूँगा, सादा तर्जमा। और ये उनके लिए भी जिक्र कर रहा हूँ जो कहते हैं कुरान मजीद बड़ा समझ, कुरान पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। तो मैं तो अलबत्त मेरे जो बाज़ दोस्त थे, जो सही दुनिया के दोस्त थे, वो कहते थे तो गुमराह हो गया लाइन से उतर गया। तो मैंने कुरान पढ़ा और मैं गुमराह हो गया। मैं फिर अमेरिका नहीं गया, गुमराह होकर मैं कौम चला गया, और
माशाल्लाह
वहाँ पर दीनी तालीम अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई इसी कुरान का सिंपल ट्रांसलेशन पढ़ने से थी। क्योंकि जो कुछ मैंने इसमें देखा और जो मैंने ज़िंदगी का प्लान किया हुआ था, इसने मुझे बड़ा क्लियरली समझा दिया। मैंने पूरा तर्जुमा पढ़ते हुए, ना मैं किसी मौलाना को जानता था, बल्कि मुझे मौलाना लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, जो जो हमारी एक माहौल था। तो किसी मौलाना से नहीं पूछा और ख़ुद पढ़ता रहा इसको। और इसके निस्फ मैंने पढ़ा होगा, निस्फ से आगे गया होगा, कि अल्लाह ताला ने यानी जो इसके ज़रिए जो दिमागों में वो डालना चाहता है, इस हद तक मैं गुनाहगार हूँ। बहरहाल उसने तौफीक दी कि मैं चला गया। तो हम तर्जमा पढ़ें, और मैं जब बाज़ बातें कुरान के बारे में इस मुआशरे में सुनता हूँ, हत्ता कि बाज़ उन लोगों से जिनका काम, जिनका सबसे इम्पोर्टेंट काम अल्लाह ने, रसूल ने, अहले बैत ने कुरान बताना लगाया, वो ऐसी बातें करते हैं लोगों के सामने कि उनके दिल में कुरान पढ़ने की रग़बत ख़त्म हो जाती है। समझते हैं ये कोई कोड में उतरी हुई ज़बान है। तो मैं शुक्र करता हूँ कि जब मुझे थोड़ा दीन की तरफ रग़बत हुई तो मैं इनमें से किसी के हत्थे नहीं चढ़ गया, वरना
वाह
कभी भी मैं कुरान के पास ना आता। और मैंने खुद पढ़ा, और अल्लाह ताला ने एक ज़िंदगी का रुख तब्दील कर दिया इस कुरान की बरकत से। तो ट्रांसलेशन पढ़ें, मैं नहीं कह रहा कि ट्रांसलेशन पर रुक जाएं, लेकिन स्टार्ट करें ट्रांसलेशन से
सही
और बाद में तफसीरें पढ़ते रहें। पहले इस कुरान को पढ़ें, यानी इसके मतन का ट्रांसलेशन पढ़ें, और इस बात पे बावर करें कि अगर दूसरों को अरबी आती है तो उनके खालिक को भी अरबी आती है।
वाह
और उनमें से किसी का इल्म अल्लाह के इल्म की बराबरी नहीं कर सकता था। जिसने ये कुरान, जिसका कलाम है, उसको माजी का भी पता था, उसको हाल का भी पता था, उसको मुस्तकबिल का भी पता था, जितना उसको पता है किसी को भी नहीं पता।
बेशक
तो उसने ये किताब लिखी है, हमारी अकलों का वो खालिक है, उसे पता था मेरे बंदों को क्या बात पले पड़ेगी क्या नहीं पड़ेगी।
बेशक
तो जितना हम इस किस्म के उलमा नुमा अफराद की बातों पर आवाम बावर कर लेते हैं और कुरान से दूर रहते हैं, एक दफ़ा अल्लाह पर भी बावर कर ले कि जो बार बार कुरान में रिपीट करता है, वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, तो है कोई नसीहत लेने वाला? तो यही आयत अल्लाह क़यामत के दिन बोलेगा, तो ना इस किस्म के किसी आलिम में जुरत होगी, ना इनके मुरीदों में जुरत होगी कि अल्लाह को जवाब दें, कि अल्लाह को कहें कि मुश्किल था, जवाब ही नहीं दे सकें। तो ये मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ।
अच्छा अगर साहब बरे सगीर की बात करते हैं, बरे सगीर में अगर हम देखते हैं तो मजल से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हों, महाफिल मिलाद हों या दीगर प्रोग्राम हों, उनमें अहले बैत की सीरत का जिक्र ज़्यादा किया जा रहा होता है और कुरान पढ़ने और समझने की तरफ कम रग़बत दी जाती है। इसकी एक तो वजह बयान करें और एक मुश्किल सवाल इसमें भी पूछना चाहूँगा कि ये अमल के कुरान से दूरी और सीरत आइम्मा पे ज़्यादातर सीरत आइम्मा की ज़्यादा बात करी जा रही होती है और कुरान पे इतनी रग़बत नहीं दी जा रही होती, तो ये अमल किसकी कोताही कहा जा सकता है?
सबसे पहले तो आगा जान मैं ये कहूँगा, काश आपने जो पहला सवाल किया है उसमें जो बात की है वो सच होती, कि मजालिस में ज़्यादातर अहले बैत की सीरत बयान होती है। कहाँ सीरत बयान होती है? सीरत का मतलब ये होता है कि उनके वो आमाल जो हमने जिसमें हमने उन्हें फॉलो करना है।
सही
अल्लाह के नबी के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, अल्लाह के रसूल की ज़ात में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए उसवा हसना है, यानी आइडियल है, ज़िंदगी का एग्ज़ाम्पल है तुम्हारे, उन्हें तुम्हें फॉलो करना। अभी आप ख़ुद बताएं, जब 12 रबीउल अव्वल आती है या जब 17 रबीउल अव्वल आती है, तो रसूल की सीरत को की तरफ इस कौम को रग़बत दी जाती है, या रसूल सोना मदीने वाला तो सोना जुल्फ़ों वाला, तो झंडियाँ लगाओ, तो केक काटो, जश्न मनाओ और घर चले जाओ।
सही है।
ऐ काश के 12 रबीउल अव्वल से 17 रबीउल अव्वल तक, क्योंकि 12 आपको पता है बिरादरान अहले सुन्नत के नज़दीक अल्लाह के नबी की तशरीफ़ आवरी का दिन है, 17 हम मतलब अहले बैत की रिवायत के मुताबिक, तो ये दरमियान का जो टाइम है, ऐ काश गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऐलान करती ये हफ़्ता रसूल की सीरत पर अमल का हफ़्ता है। सियासतदान भी अमल कर रहे होते रसूल की सीरत पर, प्रैक्टिस करते, उनको दिया जाता कि इन इन चीज़ों पर अमल करना है अल्लाह के नबी की सीरत पर। तो फिर इस मीलाद के दिनों के बाद पाकिस्तान से झूठ कम हो जाता, हरामखोरी कम हो जाती, रिश्वत कम हो जाती, कम से कम अगर ख़त्म ना होती। लेकिन अभी रसूल के नाम पे फ़कत जन्नत के टिकट दिखाते हैं, उनकी सीरत पर ताकीद करना ये बहुत कम हो गया, लिहाजा आप पाकिस्तान के मुआशरे की हालत भी देख सकते हैं। तो पहली बात तो मैं ये कर दूँ, ठीक है? और हमारे यहाँ भी मेरी बातें बाज़ औक़ात गिरां गुजरती हैं, कई साल हो गए पाकिस्तान में मुझे अल्लाह ताला ने तौफीक दी और मजालिस पढ़ते हुए कुरान के लेक्चर्स देते हुए, जो ऐलान किया जाता है ना अक्सर बुलाने के लिए किसी आलिम को या खतीब को स्टेज पर, उस ऐलान पे गौर करें, क्या कहते हैं, अब फलान आएंगे और फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत बयान करेंगे, तालीमात का जिक्र नहीं होता बीच में। आप सारी उम्र फ़ज़ाइल अहले बैत सुनते रहो, लेकिन अगर आप वो काम नहीं कर रहे जो उन्होंने कहा है, अल्लाह ने कुरान में क्या मुतालबा किया है, या अय्युहल लदीन आमनू अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल व उलिल अम्र मिन्कुम, इताअत मांगी है अल्लाह ने। अब कोई इताअत ना कहे, कहे सुभान अल्लाह क्या फ़ज़ाइल है, ठीक है? उसके बाद उसको मसाइब सुनाओ, रो रहा हो, बाहर निकले तो बिल्कुल वैसे का वैसा हो, उसे ये बताया ही ना गया हो कि अहले बैत का तुमसे क्या तकाजा है, उनकी ये कुर्बानियाँ किस लिए, तो बताने वाला भी खाइन है और ये भी कभी उस मंजिल पर नहीं पहुँचेगा जिस मंजिल पर पहुंचाने के लिए अहले बैत इस दीन के रहनुमाओं के तौर पर आए थे। जैसे जो आपने पहली बात की सीरत वाली, मैं उससे इख्तलाफ रखता हूँ कि बहुत कम मिकदार है, ज़्यादातर वो बातें की जाती हैं जिनके बाद आवाम को कुछ नहीं करना होता, वहाँ पे बैठ के सुबहान अल्लाह करनी होती है और वहीं बैठ के रोना होता है, बाहर से कोई ताल्लुक नहीं होता उस मजलिस का, बहुत ख़तरनाक बात है। और इसकी एक बुनियादी वजह हमारे मेंबर की कमर्शलाइजेशन है, पैसे बहुत हो गए मेंबर पर, तो और पैसे भी ज़्यादा तब मिलते हैं जब आवाम को खुश किया जाए। अल्लाह का हकीकी दीन बताने से कम ही लोग खुश होते हैं, वरना अल्लाह कुरान में ना कहता कि हमने कोई नबी नहीं भेजा मगर ये कि उसका मजाक उड़ाया गया, बुरा भला कहते थे नबियों को, मारते थे नबियों को, हमारे अंदर कौन से सुरखाब के पर लगे हुए कि जहाँ जाए वहाँ पर 10 बोसी हो रही हो, जहाँ जाए वहाँ पर आगा साहब आ गए, आगा साहब आ गए, फलान हो गया, बरकत के लिए आ गए। तो इसका मतलब है कि गड़बड़ हुई है, और अगर ये गड़बड़ ना होती तो हमारे पाकिस्तान के माशरे में इतनी करप्शन ना होती, इतनी अखलाकी पस्ती ना होती जो आप देख सकते हैं यहाँ की खबरों में। अगर बाहर से कोई बंदा देखे कि जो मुल्क इस्लाम के नाम पे लिया गया था,
जी
तो क्या इस्लाम का नमूना वहाँ पेश कर रहे हैं? पेश कौन करेंगे? यहाँ से तो भाग रहा, हर दूसरा बंदा यहाँ से भागने के चक्कर में। अल्लाह उसका रसूल क़यामत के दिन हमसे सवाल करेंगे, अहले बैत अतहार सवाल करेंगे, हम तुम्हें क्या देकर आए थे, तुमने पीछे क्या कर दिया? तो आपने बरसवीर की बात की, तो उस हवाले से भी मैं आपकी खिदमत में यही अर्ज़ करूँगा। देखें, बुनियाद जो है हमारे मकतब की भी वो दो चीज़ों पर है,
अहले
कुरान करीम और अहले बैत, यानी
बैत।
मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह के नबी ने इस हदीस में, जिसको हदीस सकलैन कहते हैं, तवज्जो कीजिएगा, कि उसकी हिदायत की गारंटी दी है जो इन दोनों को मजबूती से थामे।
सामने
आज जो अमूमी रवैया है कुरान के बारे में, कोई कह सकता है कि थामा हुआ नहीं कह सकता? मजबूती से थामना तो दूर की बात है, थामा हुआ नहीं। और ये याद रखें, अगर कुरान मजीद को नहीं थामा तो अल्लाह के नबी ने तो ये फरमाया कि कुरान और मेरे अहले बैत कभी जुदा नहीं हो सकते।
जुदा नहीं हो।
तो जब जुदा नहीं हो तो फिर जहाँ होंगे दोनों इकट्ठे होंगे, और अगर इकट्ठे नहीं है और एक का नाम लिया जा रहा है तो इसका मतलब है वो एक भी नहीं है। जहाँ से एक गायब, वहाँ से दोनों गायब, जहाँ होंगे वहाँ इकट्ठे होंगे। ये अल्लाह के नबी की गवाही है, इन्नहुमा लन यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैहिल हौज़। ये दोनों, कुरान और मेरे अहले बैत, ये अबदन जुदा नहीं होंगे एक दूसरे से, क़यामत के कायम होने तक हौज़े कौसर पर हूँगा मैं तो ये दोनों मेरे पास आएंगे। आज तो मेरे बहुत सारे तजर्बात हैं इस रास्ते में। आज बाज़ लोग, सब मैं नहीं कह रहा, आप माइंड सेट देखें, फ़िक्र देखें, कि क्योंकि मैं मजालिस में भी ज़्यादा मवाद आयात कुरान का होता है, तो एक शख्स ने कमेंट किया और कहा कि जो मजालिस अपलोड होती है, लाइव भी होती है, नीचे कमेंट्स, फिर मैं भी बाज़ अवक़ात देखता हूँ, तो एक ने कमेंट किया हुआ था कि मौलाना साहब, कुरान मजीद मिंबर का मौजू नहीं है, ये मस्जिद में जाके बयान करो।
अल्लाह।
बचपन से सुनते आए कि कुरान और अहले बैत जुदा नहीं है, लेकिन जब कुरान को बयान करो तो कह रहे कि ये यहाँ का मौजू ही नहीं है, यानी यहाँ जुदा है, मिंबर पे अहले बैत होंगे, कुरान मजीद का बयान ना करो। मसीह किसने सिखाया इनको? उन्होंने सिखाया है कि जिनको या खुद पता नहीं था, हकीकत का नादान थे, या ये कि दूसरे चक्कर में थे, दुनिया के चक्कर में। तो और चूंकि ज़्यादातर अवाम सुन के दीन बनाती है, अपनी फ़िक्र और अकायद बनाते हैं, तो अगर मेंबर अपना सही रोल प्ले नहीं करेगा तो काम ख़राब होगा। और मेंबर अपना सही रोल प्ले करें, फ़र्ज़ करें अगर उधर से कोई कमी हो, तो ये नहीं है कि क़यामत के दिन अवाम कहेंगे कि या अल्लाह, हमें तो इन्होंने गुमराह किया था जिन्होंने दीन बताना था। तो अल्लाह छोड़ेगा नहीं इस तरह, कहेगा तो मेरी किताब तो थी तुम्हारे पास, तुम सबको पता था इस्लाम की जो सबसे बुनियादी किताब है वो कौन सी है, ठीक है, फिर भी तुम इसके नज़दीक नहीं गए, तुम भी बराबर के बीच में शरीक।
अच्छा अगर साहब, कुरान के ज़रिए हमें बहुत से अमल बताए गए हैं, लोग अपनी परेशानियों में, बीमारियों में, मुश्किलात में इन अमाल को अंजाम दे रहे होते हैं, जैसे सूरह तौहीद पढ़ ली 3 मरतबा, सूरह फातिहा पढ़ ली 3 मरतबा, आयतल कुर्सी की तलावत फरमा ली। दीन में इन अमाल की क्या हैसियत है, और दीन इन अमाल के बारे में क्या कहता है, और इनकी शरई हैसियत क्या है, इस पर वजाहत करें।
देखिए, अगर सबसे पहले इस मामले में एक बुनियादी बात, कि जिसकी अल्लाह की किताब भी गवाही देती है, जो कि सबसे बड़ी गवाही है, अल्लाह की किताब यानी अल्लाह, और अहादीस भी गवाही देती, और अक्ल भी इसी बात की गवाही देती, और वो ये है कि जब हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, और इसी के ज़ैल में आप, मैं सबसे ऑथेंटिक चीज़ की बात कर रहा हूँ, दुआ जिसकी सबसे ज़्यादा ताकीद है कुरान मजीद में, दुआ की ताकीद है कुरान मजीद में, तावीज़ का जिक्र नहीं है, ना चिल्ले का जिक्र है, तवज्जो फरमा रहे हैं। आजकल जैसे एक टांग पे खड़े हो के तो फलान करो तो ये करो, और इस तरह की चीज़ों का जिक्र नहीं है कुरान में। मैं, मेरी मुराद नहीं है कि मैं बतौर कुल्ली इसका इनकार कर रहा हूँ, तो कुरान मजीद में एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, आप खुद समझिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल मदीना में हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मन की तरफ से अब ख़तरा है जंग का, तो कुरान में नहीं मिलता ऐ रसूल बस आप आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक दें या फलाना वजीफ़ा करें, मौला अली को भी बुला लें, जनाब सैयदा को भी बुला लें, आप इतने बाबरकत हैं, आपका वजीफ़ा जो है वो तो उनसे ज़्यादा किसका दुआ असर करेगी।
बेशक
अल्लाह ने क्या फरमाया, वअअद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, जितनी तुम्हारी इस्तेतात है ताकत तैयार करो, घोड़े तैयार रखो, असलाह तैयार करो, इसके जरिए ताकत के जरिए तुम अल्लाह के दुश्मनों और अपने दुश्मनों और जिन्हें तुम नहीं जानते उनके दिलों में भी रोब बिठाओ। आज अगर फर्ज करें ईरान पर उस तरह से हमला नहीं कर पा रहा जिस तरह अफगानिस्तान पे कर दिया था, जिस तरह इराक पे कर दिया था, जिस तरह मिसाल के तौर पर यमन पे कर दिया, मिसाल के तौर ईरान पे क्यों नहीं कर रहा, इसलिए कि वहाँ मौलाना ज़्यादा हैं और वो फूंक मारेंगे तो भस्म हो जाएगा इसराइल, ना मौलाना तो इराक में भी, नजफ़ अशरफ
बिल्कुल
में, रोज़े भी वहाँ पे बहुत थे। आपको पता है अमेरिकन ने जब फायरिंग की थी इमाम अली के रोज़े के गुंबद में गोलियां लगी थी। असल बात है हकीकत को समझना, तो हकीकत यह है कि अल्लाह ने अपने रसूल से फरमाया कि आप और आपके साथी अपनी ताकत तैयार करो जंग लड़ने के लिए। अब अगर कोई बंदा आए और वो कहे कि जी दुश्मन आ रहा है तुम ये चिल्ला करो, वो बोहतान तराश है। इस उम्मत को कमज़ोर करने में और बेकार करने में इस तरह की चीज़ों का एक बहुत बड़ा रोल है। कब? जब इनको अमल का अल्टरनेट बनाकर कौम को दिया जाए। एक फरमान है मौला अली अलैहि सलाम का कि जिसमें फरमाते हैं कि गौर से सुनिएगा, सारी बात क्लियर कर दी, यही वाली बात जो कुरान ने की है, फरमाया अमल किए बगैर दुआ मांगने वाला उस शख्स की तरह है जो बगैर कमान के तीर चला रहा हो। अगर जंग में कोई कमान साथ रख के खड़ा और तीर हाथ से चला रहा हो उसे थप्पड़ मारेंगे, बेवकूफ़ आदमी, इससे तीर काम नहीं करेगा। कमान होती इसलिए कि आज के दौर में आप ले लें कि पिस्तौल पास पड़ा हो तो गोलियां वैसे फेंक रहा हो दुश्मन की तरफ, अब कहेंगे पागल है। इस उम्मत को बाज़ चीज़ों ने इसी तरह का बना दिया। तो मैं तो क्या करता हूँ, पाकिस्तान में माशाल्लाह एक्सपोर्ट क्वालिटी है तावीज़ों की, चिल्लों की, इतने ज़बरदस्त बनाते हैं, तो सारे मिल के चिल्ले बताने वाले और तावीज़ देने वाले ऐसा कोई मिल के तावीज़ ईजाद करें ना जो इसराइल के मिज़ाइलों को मजलूम फ़लस्तीनियों पे गिरने से रोक ले। ईरान पे हमला क्यों नहीं होता, उन्हें पता है कि वहाँ से सिर्फ वो फूंक नहीं आएगी साथ मिज़ाइल भी आएंगे, जैसा कि इसराइल पे गिरे मिज़ाइल जाकर। अगर ये आयत कुरान पर अमल ना होता तो चाहे इससे भी डबल तादाद हो जाती मौलाना हजरात की, अल्लाह की सुन्नत ही ये नहीं है।
सही
तो सबसे पहले मैं ख़ास तौर पे, आपने आप जवानों की बात करें तो मैं सबसे पहले जवानों से कहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि कल इस उम्मत का, इस मुल्क का, इस उम्मत का कल आज से बेहतर हो, अल्लाह की किताब में बड़ी क्लियर बातें हैं, और उन क्लियर बातों के बाद अगर कोई हदीस भी आती है ना जो उसके अगेंस्ट हो, ठीक है, तो हमें अल्लाह के रसूल ने बताया है अहले सुन्नत भाइयों की किताबों में भी और हमारी किताबों में भी दसियों अहादीस हैं जो सिर्फ़ एक बात कहती हैं, खिलाफ कुरान कुछ कबूल मत करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया हुआ अन करीब जैसे मुझसे पहले नबियों पे झूठ बोला गया है मेरे नाम पे झूठ बोलेंगे, तुम देखना कि अल्लाह की किताब की जो बात खिलाफ हो उसे मत कबूल करना, मेरा कॉल नहीं होगा, इतनी वजाहत करके गए। लिहाजा शैतान ने क्या किया है, सबसे पहले इस कुरान को हमारी ज़िंदगियों से बाहर निकाला है, उसके बाद इस्लाम के नाम पे वो मैं क्या करता हूँ चूसनी दे दी है, चूसनी में से दूध नहीं निकलता, फीडर हो ना पीछे उसको बच्चा जब उसको चूसता है तो दूध निकलता है, लेकिन अगर सिर्फ चूसनी मुँह में दी हो तो दूध, तो इसको चूस रहे वो समझ रहे होता है दूध आ रहा है, लेकिन 100 साल भी चूसता रहे दूध नहीं आएगा। तो ये जो हमें बताया है ना, जो प्रैक्टिकल मैदान अमल, इल्म में देखें, मैदान इल्म में, टेक्नोलॉजी के मैदान में कहाँ खड़े। वैसे हम अपने आप कहते हैं हम जैसा है ही कोई नहीं, हम तो मदीने वाले की उम्मती हैं, हर दूसरी चीज़ में भीख मांग रहे होते हैं, कभी अमेरिका से, कभी बरतानिया से, यूरोप से। अभी वो IMF फिर दोबारा इन्होंने बुलाया हुआ और मज़ीद बेड़ा गर्क करने के लिए। किधर है दुआओं की में तासीर, किधर है तावीज़, किधर है चिल्ले, ये सारे जाए ना इस पे करें जाकर। ये तो बेचारी नादान अवाम को बेड़ा गर्क करते रहते हैं। तो खुलासा, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि अल्लाह के कलाम में तासीर नहीं है। अल्लाह का कलाम सुने, जिस्मानी असर होगा, बीमारी है इंशाल्लाह ताला उसका असर होगा, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि डॉक्टर के पास मत जाना, बैठ के तिलावत लगा के बैठ जाना। जो ये कहता है वो असल में अपने मुरीद से कुछ इस्तफादा खुद करने के चक्कर में है, वरना आपको अल्लाह के रसूल की सीरत में नहीं मिलेगा। आप देखते हैं, एक मिसाल दे दूं और इस बात को यहीं पे तमाम करूं, आप अगला सवाल कीजिएगा। मौला अली अलैहिस्सलाम बाब मदीनतुल इल्म, उनको जब ज़रबत लगी है, डॉक्टर को बुलाया गया है।
वाह बेशक।
कौन कौन थे वहाँ पर? मौला अली खुद वहाँ पर है, इमाम हसन वहाँ पर है, इमाम हुसैन वहाँ पर, सब है ना वहाँ पर, लेकिन
जी
तबीब बुलाया गया। उसके बाद कोई मुझे कहे तबीब मत बुला, ये वाला तावीज़ कर, कम अज़ कम मैं तो नहीं मानूंगा।
बिल्कुल।
बहुत कुछ गलत बातें हमारी किताबों में आई हैं। इसराइलियात, उलमा बताते हैं कुछ रिवायात, उनका नाम ही इसराइलियात रखा है कि लोगों ने इस्लाम का लिबादा ओढ़ा और खुराफात डाल दी बीच में ताकि उम्मत इस्लाम उसके पीछे लग जाए। अवाम पसंदाना बातें, स्टोरियाँ, किस्से, अवाम उसके पीछे लग जाए। असल जो प्रैक्टिकल, आप पूरा कुरान पढ़े, फुल प्रैक्टिकल है, पूरा एक तहरीक है, एक नेजत है, वो रूई निकाल दी इस उम्मत में से, इस चलाकी से। तो जो इसके वाज़े उसूलों के ख़िलाफ़ बात होगी, तो इंशाल्लाह जब नौजवान इसको पढ़ेंगे तो उसके बाद फिर खुद ब खुद अल्लाह ताला की ये किताब, जिसको अल्लाह ने नूर कहा है, तो जब ये नूर मिलेगा तो फिर वो बहुत कुछ नज़र आ जाएगा जो इस नूर के बग़ैर नज़र आ ही नहीं सकता।
अच्छा आगा साहब, कुरान से इस्तखारा के बारे में लोग अलग अलग राय रखते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि कुरान से इस्तखारा है क्या, होता क्या है, और आया इसके फ़ैसले के आ जाने के बाद उस पे अमल करना कितना ज़रूरी होता है।
पहले तो सबसे पहले ये बात मालूम होनी चाहिए कि इस्तखारा का माना क्या है। अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इस्तखारा का माना है खैर तलब करना, खैर मांगना। तो जब इस्तखारा किया जाता है तो जो अभी आम तसव्वुर है इस्तखारे का, वो अर्ज़ कर रहा हूँ, तस्बीह के ज़रिए या कुरान करीम के ज़रिए इस्तखारा किया जाता है। तो यानी उसका मतलब ये होता है कि हम होया कि अल्लाह ताला से ये सवाल कर रहे हैं कि कोई अल्लाह ताला हमें इशारा कर दे कि ये जो मैंने काम करना है करूं या ना करूं, खैर है ये, इसमें मेरे लिए इशारा है।
सही।
तो इसमें पहली बात तो आपको ये बता दूं कि इस्तखारा के हवाले से जो मोतबर बात है वो नमाज है इस्तखारे की,
सही।
कि जब आपको कोई अहम काम दरपेश हो तो आप 2 रकात नमाज पढ़ें, उस नमाज इस्तखारा उसे कहते हैं, और अल्लाह से उसके बाद दुआ मांगे, खैर तलब करें। इस्तखारा हरगिज़ अल्टरनेट नहीं है अक्ल और जिनसे उस मामले में मशवरा किया जाना चाहिए उनसे मशवरे का
सही
अल्टरनेट, इस्तखारा हरगिज़ नहीं।
सही
अल्लाह तबारक व तआला का कुरान, अकल इस्तेमाल करो, फिक्र करो, गौर करो, इससे भरा पड़ा। तो बस मैंने अर्ज़ किया कि जो असल मोतबर ज़्यादा जिसकी रिवायात है वो नमाज है इस्तखारे की। ये जो इस्तखारे का तरीका है, इसकी जो इसके बारे में जो रिवायात आई हैं वो कोई बहुत मोतबर रिवायात नहीं है, लेकिन बहरहाल इस्तखारा किया जाता है। अब अगर कोई इस्तखारा करे और उस पर उसकी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ आ जाए इस्तखारा, तो अब क्या किया जाए? तो उलमाए कराम मराजे, इसके बारे में उनका फतवा यही है कि इस्तखारे पर अमल करना ज़रूरी नहीं है, यानी शरी तौर पर, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आपने इस्तखारा किया है और इसमें वो अल्लाह ताला के दीन ने ये तरीका बताया या नहीं बताया, ऑथेंटिक ये बात है या नहीं, इसको साइड पे रख दे। आपकी तो नीयत यही थी ना कि मैं अल्लाह से मशवरा ले रहा हूँ, अल्लाह से तो
सही
जो इशारा होगा अल्लाह की तरफ से होगा, तो फिर अगर कुछ हुआ है तो फिर उसका एहतराम करो। ये नहीं है कि तुम्हारा दिल नहीं है तो फिर को 2 दिन बाद दोबारा इस्तखारा करो। थोड़ी सी पहले एक तरफ के लिए इस्तखारा किया था, अब दूसरी तरफ खरीदने का इस्तखारा किया था, अब खैर ना खरीदने का इस्तखारा करो जब तक कि अपनी मर्जी का फैसला ना आ जाए। तो ये एक किस्म की तौहीन है उस ज़ात के तकद्दस की। लेकिन बहरहाल इस्तखारे पर, अगर इस्तखारा होता कोई बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ तो फिर उस पर अमल करना ज़रूरी होता, फिर कैसे हो सकता है बंदा अमल ना करे। लेकिन इस्तखारे पर अमल करना ज़रूरी नहीं है।
अगर इमाम खुमैनी की ज़िंदगी देखते हैं तो मुसलसल इमाम खुमैनी तिलावत कुरान फरमाते नज़र आते हैं। जब आप फ़्रांस से वापस ईरान तशरीफ़ ला रहे थे तब भी जहाज़ में तिलावत कुरान फरमा रहे थे। अगर देखा जाए तो आगा साहब, हम ये कह सकते हैं कि इमाम खुमैनी का जो इनकलाब इस्लामी ईरान है और फतुहात इमाम खुमैनी जो हैं, वो सब की सब इसी कुरान ने मजीद पर अमल करने का नतीजे हैं। इस पे आगा साहब वजाहत कर रहे हैं।
इमाम खुमैनी रिजवानुल्लाह ताला अलैह, मैं बहरहाल अपने आप को बहुत छोटा समझता हूँ कि मैं क्योंकि इमाम खुमैनी की जो हयात मुबारका थी, उनकी जो ज़िंदगी थी, उस वक़्त हमें दीन का इतना, सिर्फ उनका नाम ही सुना हुआ था। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो बस नाम सुना था कि इमाम खुमैनी है और इनकलाब लाए। हमारे ज़्यादातर क्लास फेलोज़ जो हैं, शिया लोग तो बहुत कम थे, ज़्यादातर अहले सुन्नत भाई थे हमारे क्लास फेलोज़।
सही
लेकिन एक बात हम सुना करते थे उनसे भी कि पाकिस्तान को ठीक करना है ना तो यहाँ खुमैनी चाहिए। ये
वाह
जब भी कोई नाखुशगवार बात पाकिस्तान में होती थी और फिर कोई कमेंट हो रहे होते थे, तबसरा बहस हो रही होती, तो लोग किसी न किसी के मुँह से ये निकलता था कि जब तक पाकिस्तान में कोई खुमैनी जैसा ना आए तब तक यहाँ पे इस्लाह मुमकिन नहीं। आगा जान, अगर मैं इमाम खुमैनी और कुरान के हवाले से बात करना चाहूँ तो ये तो बहुत तुलानी दास्तान है। मैं इतना अर्ज करूँगा कि आप ने ख़ास तौर पर जो वीडियोस इमाम खुमैनी के आखिरी अय्याम की हैं तो आपने देखा होगा, उसमें वो कुरान मजीद की तलावत करते थे। और इमाम खुमैनी ने अपने वसीयत नामे में, अभी मेरे पास मौजूद है उसका, उसमें इमाम खुमैनी ने दीनी मदारिस के तालिबे इल्मों से और दानिशगाहों यानी यूनिवर्सिटियों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले तालिबे इल्मों से दोनों से खिताब किया है और कहा है कि ये जो बात मैं करने लगा हूँ ये मैं तकल्लुफ़ से नहीं कह रहा। होता है ना उलमा तकल्लुफ़ से कहते हैं, जी हम तो बड़े यूँ हैं, अदना है फलां। कहा ये जो बात मैं करने जा रहा हूँ ये मैं तकल्लुफ़ से नहीं कह रहा, ये मैं बड़ी संजीदगी से कह रहा हूँ कि इस वजह से कि मैंने तमाम ज़िंदगी कुरान में नहीं लगाई आज पछता रहा हूँ। और फिर फरमाते हैं कि ए दीनी मदारिस के तालिब इल्मों, ए कॉलेज यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों, क़याम करो बेपा खीजी यानी उठ के खड़े हो जाओ और कुरान को महजूरियत से निकालो, यानी कुरान को लेके आओ वापस मुआशरे में, कुरान नहीं है मुआशरे में। कुरान को अपनी ज़िंदगियों का मकसद आला, आला यानी सबसे ऊंचा मकसद आला करार बेदहित, सबसे आला मकसद अपनी ज़िंदगियों का करार दे दो। अगला जुमला बड़ा खतरनाक है, वरना ऐसे ना हो कि जैसे आखिरी उम्र में जैसे मैं अफसोस कर रहा हूँ तुम भी अफसोस करो। इमाम खुमैनी का राबता कुरान मजीद से बहुत करीब है। ये जो इमाम खुमैनी का अफसोस है, मैं सोचता था कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो जहन में एक चीज़ फ्लैश हुई। आपको पता है जन्नत के बारे में क्या कहते हैं, जन्नत की किसी चीज़ से इंसान बोर नहीं होगा। आप यहाँ अपनी फेवरेट आइसक्रीम खाओ, गर्मियों का मौसम है इसलिए आइसक्रीम की मिसाल दे रहा हूँ, आइसक्रीम खाओ आप, पहला जो चम्मच खाओगे आप कहोगे वाह वाह मज़ा आ गया, दूसरा तीसरा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो जो लज्जत है
कम
उसका
हो जाएगा।
एहसास कम होना शुरू हो जाएगा, और अगर कप ज़्यादा बड़ा हो सकता है आप एंड में कहोगे यार मेरी बस हो गई।
वाह,
जन्नत में यूं नहीं होगा, यहाँ पर पहले के बाद दूसरा ज़रा कम होता है, तीसरा कम होता जाता है, वहाँ पे ग्राफ ऊपर जाएगा।
सुभान,
यानी अल्लाह ने उसे ऐसा बनाया वहाँ की नेमतों को कि लजीज से लजीज तर होती जाएगी। ठीक है, तो ये कुरान का मामला भी यूं ही है। तो इमाम खुमैनी चूँकि बहुत अटैच थे कुरान से, तो जितने ज़्यादा थे उतनी ज़्यादा तड़प थी उनमें, और इसलिए उन्होंने कहा कि चूँकि मैंने सारी उम्र नहीं लगाई तो मैं बड़ा पछताता हूँ कि ये जो लजीज तरीन चीज़ थी मसलन इसके बारे में ये कमी क्यों है। तो जो भी इसमें जितना करीब होगा उतना ही वो कहेगा कम हूँ,
सुभान,
ठीक है ना, और जो जितना दूर होगा इससे इतना ही बेनियाज नज़र आएगा। चेक भी आप करेंगे ना, सवाल करेंगे, आता भी नहीं होगा। बल्कि मैं तो बाज़ अवक़ात आवाम से कहता हूँ कि जिसको आप दावत दें ना मजलिस पढ़ने के लिए, तो मैं उसको इस्तखारे का नाम देता हूँ। कहते हैं एक इस्तखारा आप करते हैं ना, मौलाना हज़रात करते करवाते हैं आप, एक इस्तखारा आप करें। आप क्या करें कि जिसको दावत दे रहे हैं अशरे के लिए उसके सामने कुरान खोलें, ऐ काश ये कौम करे ये काम, तो कुरान खोलें उसके सामने ऐसे ही देखें जो सफ़ा आ जाए तो अरबी में लिखा हुआ, तो आप उससे कहें किबला ये इसकी तिलावत करके सुने, तो वो शुरू से लेकर आखिर तक सफ़े की तिलावत कर दे। सही सही, जो ना कर सके आप कहें इस्तखारा अच्छा नहीं आया, हम किसी और को बुलाएंगे जिसको अल्लाह की किताब पढ़नी नहीं आती, वो हमें दीन का खाक बताएगा। उसके बाद अगर वो पढ़ ले तो फिर उससे कहें कि दूसरा स्टेप इस्तखारे का ये है कि अब इसमें अल्लाह ने जो फरमाया वो भी बताएं।
अच्छा अगर साहब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से अगर हम कोई बात करते हैं तो यकीनन वो हमें जवाब देते हैं उसका, मगर हमारे गुनाह हैं जो कि रुकावट बनते हैं उनका जवाब हमसे हम तक पहुंचने में। इसी तरह अगर साहब अगर हम कुरान से कोई सवाल करें तो क्या उसका जवाब कुरान से हासिल कर सकते हैं? अगर हाँ कर सकते हैं तो फिर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, ये वजाहत करें।
जी आगा, कुरान मजीद से जवाब लेने का तरीका ये है कि आप इसको अपने दिमाग में बिठा लें तो ये आपको फिर ऑटोमेटिकली जवाब देता रहेगा। आप किसी महफिल में किसी मौजू पे गुफ्तगू हो रही होगी, उसके रेलेवेंट जो भी अल्लाह ने अपनी किताब में बात की आपके जहन में ऑटोमेटिकली आएगी। आप कहेंगे कुरान में ये है तो फलान बात उसके अगेंस्ट कैसे हो सकती है,
सही
तो इसका तरीका वो नहीं है कुरान से जवाब लेने का जो हम इस्तखारे वाला करते हैं।
सही,
वो तो हम कुरान भी कहता होगा तेरे में इतनी नहीं है तो खुद पढ़ सके, मौलाना से कहता है पढ़ के इस्तखारा करके दे, तुझे तो खुद पढ़ना चाहिए था,
सही बात,
ठीक है ना। तो खुद अटैचमेंट होनी चाहिए जब कुरान से, जब आप अटैच होंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको ये बिल्कुल जवाब देगा, आपको गाइड करेगा, और इसके बारे में आइमा अहले बैत की बहुत सारी रिवायात हैं और ख़ुद कुरान मजीद में बहुत सारी आयात हैं। इन हादल कुरआन यहदी लिल्लती ही अकवम, यकीनन ये कहने वाला कौन है, अल्लाह, यकीनन ये कुरान उस राह की तरफ रहनुमाई करता है जो सबसे ज़्यादा सीधी है और मोहकम है, जिसमें कोई टेढ़ापन नहीं, कोई कमज़ोरी नहीं। तो ये
सही,
अल्लाह दावा कर रहा है तो करे। और आपको पता है अल्लाह तबारक व तआला काफिरों से कहता है पढ़ो इसको, वो लोग जो कहते थे ये रसूल नहीं है अपने पास से घड़ा है कुरान, अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि ये लोग जो ये बातें करते हैं ये कुरान में गौर क्यों नहीं करते। यानी वो भी
सही,
कर सकते हैं
बिल्कुल
जो कह रहे हैं ये, जिस जिनका ईमान ही नहीं है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है, और जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं रसूल पाक पर कि कुरान इन्होंने अपने पास से घड़ा है, अल्लाह उनसे कह रहा है तुम ये कुरान है ना आओ तुम इस पर गौर करो। वलौ काना मिन इंद गैरिल्लाह लवजदू फीह इख्तिलाफन कतीरा, चैलेंज करता है, अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो ये हतमन इसमें बहुत सारा इख्तलाफ पाते। ये किन को चैलेंज है, मुनाफिकों को, जो कुरान का अल्लाह का कलाम होने को डिनाई कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, उनको चैलेंज कर रहा है अल्लाह। और अल्लाह उस बात का कभी हुक्म नहीं देता जो किसी की ताकत से बाहर हो। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, यानी अल्लाह जानता है कि ये तोहमत लगा रहे हैं मेरे रसूल पर जिनके दिलों में ईमान नहीं है, ये भी अगर इस पर गौर व फिक्र करें तो ये इनको बता देगा। जैसे आज आप देखते हैं यूरोप में, अमेरिका में कई लोग जिन्होंने इस्लाम दुश्मनी में कुरान पढ़ना शुरू किया कि पता तो करें कि ये टेररिस्ट लिटरेचर क्या कहता है, और पढ़ते पढ़ते मुसलमान हो गए। उनके इंटरव्यूज़ आते हैं कि मैंने शुरू किया था इसलिए, लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया मैंने देखा ये तो कमाल है। तो ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि कुरान गाइड करता है। ये तरीका नहीं है कि साथ इस्तखारे हर जगह पे इस्तखारे करो ना। कुरान मजीद को यहाँ आपको पता है आइम्मा अहले बैत की क्या ताकीद है कि कुरान अल्लाह और बंदे का एग्रीमेंट है, अहदनामा है। अल्लाह ने कहा ये करो और मैं फिर ये करूँ, एग्रीमेंट ऐसे ही होता है ना दो
बिल्कुल
तरफ के दरमियान। तो मोमिन को चाहिए कि हर रोज़ इस अहदनामे को देखे। देखने से मुराद ये नहीं है कि दूर पड़ा हो देख ले या थोड़ा खोल के
बिल्कुल
देख ले ऐसे ही, यानी देखे क्या लिखा है
गौर
इसमें
करें।
ताकि उसे पता हो कि ये एग्रीमेंट पर मैं अमल करूंगा तो जो उसने जन्नत कही है कि मैं इस काम के नतीजे में दूंगा तब वो देगा।
बिल्कुल
हम एग्रीमेंट ही नहीं पढ़ते। तो जब ये एग्रीमेंट हम क्यों ताकीद है कि फरमाया हमारे मानने वाले वो होते हैं जो हर रोज़ कुरान मजीद की आयात, चंद आयात की तिलावत करते हैं। जो भी ऐसा करेगा कुछ अरसे के बाद ये सारा का सारा उसके दिमाग में आ जाएगा, लेकिन ये नहीं किया जाता। जो करते भी हैं वो भी, मैंने रात को ये वाली सूरत पढ़ी थी, वो उसी सूरत का तर्जमा आप पूछें उनको नहीं पता होगा।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आगा साहब कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें थोड़ा सा वक्त दिया। इसी तरह इस इन पॉडकास्ट का सिलसिला मुख्तलिफ मौजूदात पे मुख्तलिफ उलमकराम के साथ आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए, और
बिल्कुल
आप आज के दौर में माशरे की के अंदर जिन मौजूआत को डिस्कस करने की ज़रूरत है उनको देखें ताकि उनका जो हल, हकीकी हल, ना कि तावीज़ों वाला हल, हकीकी हल, अमल का हल, आगे बढ़ने का, अमली स्टेप्स लेने का हल, जो अल्लाह की किताब ने और मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की सही रिवायात ने, मोतबर रिवायात ने दिया है, वो मुआशरे के सामने, बिलखसूस जवानों के सामने रखा जाए ताकि इस मुल्क का और इस उम्मत का कल आज से बेहतर हो सके। अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए।
ना है।